तीर्थों की महिमा का रहस्य क्या है? प्रश्न। हमको किसी ने पूछा है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरो मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ही गंगा जी के तीर पर मृत्यु होने से मुक्ति हो जाती है। यदि काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाती है, गंगा जी के तीर पर मरने मात्र से मुक्ति हो जाती है, तो फिर क्यों ये भजन साधन सत्संग दूसरा उपाय करें ही क्यों? क्यों बखेड़ा करें इतना? मरना होगा तब काशी में चले जाएंगे, या गंगा जी का किनारा होगा वहां मर जाएंगे। वहां मरने से कल्याण तो होता ही है ना, यदि वही करें। सेठ जी कहते हैं, हमारा उत्तर सुनो। शास्त्रों में एक प्रकार से ये वाक्य मिलते हैं, सात पुरियों में से किसी भी पुरी में मरे या गंगा जी के किनारे मरे तो मुक्ति होती है। मैं इस बात को मानता हूं और ये भी मानता हूं कि काशी का कुछ विशेष महात्म्य है, उसमें गंगा जी भी बहती है। एक तो काशी खुद है, एक गंगा जी का बहना। अतः एक काशी के संबंध में कह देने से सबकी बात आप ही समझी जा सकती है। काशी में मुक्ति होने से जो मुक्ति, काशी में मृत्यु होने से जो मुक्ति होती है, वह मुक्ति अपुनरावृत्ति अपुनरावर्तिनी होती है। अर्थात काशी में मृत्यु होने पर फिर स्थूल शरीर नहीं मिलता। परंतु इतनी बात अवश्य है, बहुत गहरी बात है, तत्काल मुक्ति तो केवल मुक्ति के साधन करने से होती है। काशी में मरेंगे तत्काल मुक्ति नहीं होगी, स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, परंतु वहां भी पाप का फल मिलेगा भैरवी यातना से। लेकिन साधन भजन से जो मुक्ति होती वो तत्काल होती है, इस शरीर के रहते हुए होती है। और ज्यों ज्यों व्यक्ति साधन भजन में लगा रहता है, त्यों त्यों उसको स्थान विशेष में मोह नहीं रहता कि यहीं मरो यहां करो, कुछ नहीं, कहीं मरो, क्योंकि उसके पास स्थान से ज्यादा साधन का बल है। बहुत बढ़िया बात। वास्तव में पापियों के लिए यह प्रश्न है कि भाई जीवन में बहुत पाप किए, पाप ही पाप में डूबे रहे, और हमारे सूक्ष्म शरीर में पापों का दंड भरा पड़ा है, मरने के बाद हमारी क्या दशा होगी, हमारी मुक्ति कैसे हो? ये तो उनके लिए है कि भाई अब और तो कोई उपाय नहीं रहा, काशी में जाओ और मर जाओ। इतना अवश्य है कि इसमें भी दंड भोग का विधान है। हमने ऐसा भी सुना है कि पाप के दंड भोगने की एक सीमा होती है, वो अधिक से अधिक 88,000 वर्ष है। चाहे किसी के कितने ही अधिक पाप क्यों न हो, इतने वर्षों के बाद तो केवल ये मुक्ति होती है, ऐसी भी बात आती है। परंतु साधन भजन करने से जो तत्काल मुक्ति होती है, हमको तो इधर विचार करना चाहिए। ये जो 88,000 वर्ष की बात कही है सभी को लगे ऐसी बात नहीं है, किसी को कम भी लग सकते हैं। जितने पाप कम है उनकी मुक्ति में समय भी कम लगता है। काशी की यही विशेषता है कि उसमें प्रथम तो मरने के बाद स्थूल शरीर मिलता नहीं, और दूसरे मुक्ति प्राप्त करने की एक सीमा होती है। इसमें किसी किसी का ये मत भी है कि दृढ़ विश्वास से मरने वाले की मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। काशी में आकर के रह गए, फिर बार बार रहता है कि भाई रह तो रहे हैं लेकिन मुक्ति नहीं, भगवान के भजन के बिना मुक्ति कैसे होगी, केवल काशी के मरने से कैसे मुक्ति होगी, ऐसे भी भाव आते हैं। तो दृढ़ विश्वास से मरने वाले की ही मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। कोई कोई तो यहां तक भी कह देते हैं कि भाई चाहे विश्वास हो न हो, काशी में मरने से मुक्ति हो ही जाती है। मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि ये सब बातें झूठी हैं, ऐसा तो नहीं कहता हूं। और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि विश्वास नहीं करने वालों की मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि इसमें शास्त्र प्रमाण है। परंतु इतना कहा जा सकता है कि विश्वास न करने की अपेक्षा विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास न करने वाले की मुक्ति हो गई तो करने वाले की भी हो जाएगी। यदि विश्वास न करने वाले की मुक्ति नहीं होती हो तो विश्वास करने वाले की तो मुक्ति हो जाएगी, विश्वास न करने वाला यूं ही रह जाएगा। इसलिए विश्वास करने में लाभ है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। हम लोगों को मान लेना चाहिए काशी में मरने से मुक्ति होती है। यह दूसरी बात है कि चाहे अभी हो चाहे कुछ वर्षों बाद हो या 88,000 वर्ष शेष होने पर हो, परंतु इस मुक्ति के साधन को न तो ऊंचा समझता हूं और न मैं पसंद करता हूं। सेठ जी ने कहा है काशी में मर जाओ कि अमुक जगह मर जाओ, इसको कोई बहुत ऊंचा नहीं मानता हूं। मैं क्यों नहीं मानता हूं इस बात को समझाता हूं। अब उदाहरण दे रहे हैं, बहुत मार्के की बात है। संसार में सभी मनुष्य पेट भरते हैं, उनमें तीन प्रकार के आदमी हैं, तीनों में से एक 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 उत्तम है। पहले तो सबसे नीचे पुरुष वो है जो दूसरों के लिए भार रूप होकर के भीख मांग मांग करके पेट भरते हैं, सबसे नीचे दर्जे के आदमी। कुछ ऊंचे वे हैं जो परिश्रम करके पेट भरते हैं, रात दिन काम करते हैं पेट भरते हैं अपना। और सबसे ऊंचे वे पुरुष हैं जो अपने पेट की कुछ भी चिंता न करते हुए निरंतर सदाव्रत बांटते रहते हैं, आओ भाई आओ, दूसरों का पेट भरते हैं। तीनों में से कौन बड़ा है तो इसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है कि जो दूसरों का पेट भरते हैं उनका तो पेट अपने आप ही भर जाएगा, उनके लिए सारे लोग लालायित रहेंगे। सदाव्रत में जो सबको खिचड़ी कड्डी रोटी देता है उसको, अब आप बैठ जाओ आप भोजन कर लो हम करते हैं, आप भोजन करो हम करते हैं, तो उसके भोजन की चिंता सब करते हैं, क्योंकि वो सबको सदाव्रत बांटने के बाद भोजन करता है। तो सबसे बड़ा पुरुष तो वो हुआ, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से मोक्ष भी तीन प्रकार के श्रेणियों में बटा हुआ है। कुछ तो ऐसे है भजन साधन तो किया नहीं, कल्याण का विचार किया नहीं, देखा शरीर में बीमारी है, रोग है, और कोई है, चलो काशी में मर जाओ और मुक्ति हो जाए। एक तो भी आदमी, कुछ ऐसे हैं जो संसार के भोग विलास को छोड़कर सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार की आसक्ति का छेदन कर एकांत में बैठकर भजन ध्यान सत्संग किया और कल्याण किया। और तीसरे नंबर के वे हैं जो अपने कल्याण की कुछ भी चिंता नहीं की, प्रहलाद जी के भांति केवल दूसरों का ही कल्याण चाहते हैं और करते हैं। तो ऐसे लोगों का कल्याण क्या बाकी रहता है? ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो तो मुक्ति का सदावर्त बांटते हैं, दूसरों की परवाह न करके भजन ध्यान के द्वारा अपना कल्याण करते हैं, वे दो नंबर के साधक हैं। और सबसे नीचे श्रेणी के वे साधक हैं जो भिखारी की तरह किसी दूसरे पर भार डालकर काशी आदि में मर करके अपना कल्याण करते हैं। ये भिखारी के समान भार डालना है। मुक्ति तीनों की होती है, परंतु साधन में भेद है, इसलिए सब लोगों को मुक्ति का वह साधन चुनना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो, अपना कल्याण हो। हमसे कई पूछते हैं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक पाप बहुत बढ़ते रहते हैं, जीव अधोगति में जाता है, और ज्यों ज्यों कलयुग में पाप बढ़ता है त्यों त्यों लोगों की वृत्ति बड़ी नीची गिरती चली जाती है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कलयुग के बाद अचानक सतयुग आता है? कलयुग में जब प्राणी पाप ही पाप में चले जाते हैं तो फिर अचानक सतयुग के अंदर कैसे लोगों की वृत्ति बदल जाती है? तो इसके उत्तर में हम बोलते हैं कि सतयुग में कोई दूसरे जीव नहीं आते हैं। हम लोगों ने करोड़ों बार सतयुग में जन्म लिया है, करोड़ों बार कलयुग भी देखा है, सबने देखा है। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की चौकड़ी 1000 बार बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस प्रकार के रात दिन से 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होती है। सतयुग से धीरे धीरे लोगों की पाप प्रवृत्ति त्यों ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों उनकी नीची अवस्था होती चली जाती है। सतयुग में जो मनुष्य होते हैं उनमें से कितनों का तो उद्धार हो जाता है, परंतु वह भी बहुत थोड़े मनुष्यों का। सतयुग में जो मनुष्य होते हैं उनमें से कितनों का तो उद्धार हो जाता है, परंतु वह भी बहुत थोड़े मनुष्यों का। अधिक लोगों का तो धीरे धीरे पतन ही होता है, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता आता है और उनका प्रकृति के साथ संग रहने से, प्रकृति जड़ है, जड़ का संग रहने से अधोमुखी होना स्वाभाविक है, अतः अधः पतन होता है। जब इस प्रकार नीचे गिरते गिरते कलयुग के अंत में जीवों की दुर्दशा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जैसे वृक्ष की लंबाई चौड़ाई घट जाती है, सरिताओं का जल सूख जाता है, मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प हो जाती है और अत्याचार तथा अनाचार की सीमा को लांघ चले जाते हैं, तब जीवों पर दया करके भगवान अवतार लेते हैं और साधुओं को बचाकर साधारण लोगों को उपदेश देकर और अत्यंत दुराचारियों का विनाश करके जीवों का उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। पापियों के तथा पाप के इस प्रकार एकदम घट जाने से साधुओं की बहुलता होती है और धर्म की स्थापना से पुनः सतयुग आता है। पुनः जड़ प्रकृति के संसर्ग से जीव फिर नीचे चले जाते हैं, फिर कलयुग आता है, फिर भगवान अवतार लेते हैं, जीवों को उठाते हैं। ये क्रम बराबर चलता रहता है। अब इस क्रम के अंदर बुद्धिमान मनुष्य वही है जो भजन ध्यान करते हुए परमात्मा को प्राप्त होकर मुक्त हो जाए, वह तो इस चक्र से निकल जाएगा। बाकी सब संसार चक्र में यूं ही पड़े हुए अनेक प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। यह संसार चक्र बराबर चलता रहता है। जैसे समुद्र में से सूर्य नारायण अपनी तेजोमयी किरणों के द्वारा जल खींचते हैं, समुद्र के अतल गहराई में पड़ा हुआ जल सूर्य की किरणों से ऊपर उठता है, फिर भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं, फिर जल बनता है, फिर ओले बनते हैं, और वह जल नीचे पहाड़ों पर आता है, पहाड़ों से नदियों में आता है, नदियों में समुद्र में, नदियों से समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र से उठा हुआ जल समुद्र में किस प्रकार से नीचे होता आया? समुद्र से तो बहुत ऊपर चला गया, आकाश में चला गया, बादल बन गया, और ऊंचा हो गया, पानी बन गया, और ऊंचा हो गया, ओला बन गया, और जब गिरने लगा तो पहाड़ पर गिरा, नदी में आया, समुद्र में जाकर मिल गया। इस प्रकार जल के उठने और गिरने का यह चक्र निरंतर चला करता है। यदि जल केवल उठे ही उठे तो समुद्र खाली हो जाए, और यदि गिरे ही गिरे तो यह जल कहां रहेगा, ठाव ही नहीं मिलेगी। अतः उठना और गिरना ये दोनों काम होते हैं। इसी प्रकार से भगवान की दया के संयोग से, ये देखो जीवन मुक्त महात्मा के बिना ये बात पैदा ही नहीं होती, बड़ी अच्छी बात। भगवान की दया के संयोग से नीचे पड़े हुए कलयुगी जीव ऊपर उठकर सतयुग में आते हैं और जड़ प्रकृति के संसर्ग से वापस नीचे गिरते हैं। जीवों के नीचे गिरने में तो प्रकृति कारण बनती है और ऊपर उठाने में दया निधान भगवान की दया कारण बनती है, दया से ऊपर उठते हैं। जैसे जल के नीचे गिरने में शीत हेतु है और ऊपर उठने में सूर्य नारायण का तेज हेतु है। जब पापों के अप्रश्न करते हैं, जब पाप अधिक बढ़ते हैं तब भगवान दया करके अवतार धारण करते हैं और अवतार से जीवों की दुर्दशा का अंत होता है, फिर सतयुग आता है। अतः पाप का बढ़ना तो अच्छा ही हुआ ताकि भगवान आ गए। उत्तर देखो, ऐसा गहरा प्रश्न है, इसका उत्तर छोटे मोटे ज्ञान वाला दे नहीं सकता है। इसका उत्तर है, पापों का अधिक बढ़ना किसी तरह भी ठीक नहीं है, और पापों को अधिक बढ़ा करके भगवान को बुलाने की इच्छा भी अत्यंत निंदनीय है। यदि पापों के बढ़ने से भगवान आते हो तो हमें यही इच्छा रखनी चाहिए कि हे भगवान, आप चाहे न आए परंतु पाप नहीं बढ़ना चाहिए। पापों की वृद्धि चाहना तो बहुत बुरी बात है। भगवान का आगमन केवल पापों के बढ़ने से ही नहीं होता है। भगवान के आगमन के तीन कारण हैं, गीता में बताए। एक तो संतों की रक्षा, एक दुष्टों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। तीन कारण हैं। तीनों कारणों में से किसी एक कारण से भी भगवान आ सकते हैं। हम लोगों पाप बढ़ने से भगवान आवे ऐसी बात मन से निकाल दो। अब तक जो अवतार हुए हैं उनमें से कहीं कहीं तो ये तीन हेतु आए हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। कहीं कहीं तो तीनों हेतु है, कहीं दो हेतु है, कहीं केवल एक ही हेतु है। हमने विचार किया, इतने अवतारों में तीनों ही समय में कौन आए, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण और नृसिंह भगवान, ये तीन अवतार ऐसे हैं जिन्होंने तीनों काम किया। धर्म की स्थापना की, दुष्टों का विनाश किया और संतों की रक्षा की, तीनों ही काम किया। परशुराम जी ने केवल दुष्टों का विनाश किया, ऋषभदेव जी, सनकादि और दूसरे हंस भगवान, इन्होंने केवल धर्म की स्थापना का काम किया। भगवान ने ध्रुव जी को जो विष्णु रूप से दर्शन दिए थे, उनमें से भक्ति एक कारण थे और कोई कारण नहीं था। हंसावतार भी भक्ति से ही हुआ है। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल के लोग भगवान का अवतार मानते हैं। हमारी समझ में तो वे एक कारक पुरुष हो सकते हैं। भगवान के अवतारों की गणना तो हमारे शास्त्रों में आई हुई है। केवल भक्ति का उपदेश करके ही उन्होंने लोगों का उद्धार किया। इसलिए पाप बढ़ेंगे तब भगवान आए, इस बात को तो छोड़ो, अपने तो भगवान की भक्ति में लगो। भगवान की भक्ति के बल से भगवान का शुभागमन हो जाए तो ठीक है, और नहीं आवे तो हमारे उनकी मर्जी बहुत ठीक है। हमें भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति का जोर बढ़ाना चाहिए। भगवान पर जोर कभी मत डालो कि हमको दर्शन देवे ही, मर्जी है भगवान के आगमन की, तो बात भगवान की मर्जी पर डाल दो। पाप के बढ़ जाने पर भगवान का आगमन होता हो तो भगवान भले ही न आए, पाप नहीं बढ़ना चाहिए। कोई कहे कि रोग फैल गया, चलो डॉक्टर को बुलाओ, तो रोग फैल गया डॉक्टर को बुलाओ तो अब वो डॉक्टर आके इलाज करेगा, इसकी बजाय तो रोग नहीं फैलना ही अच्छा था। ऐसे ही पाप के बढ़ने से भगवान आते हो तो इसे तो अच्छा यही है कि पाप न बढ़े। कि भगवान नहीं आए तो कोई हर्जा नहीं। इसलिए भगवान के आगमन में तो भगवान की भक्ति को ही कारण माने, भगवान के ध्यान में मस्त रहें। हमको भगवान का स्वरूप अपने हृदय में मिल गया, अथवा निराकारवादी लोग आत्मा की नित्यता समझ गए, इतनी मस्ती की चीज अपने अंदर पड़ी है, फिर क्यों संसार का चिंतन करके दुख पाए। लोग कहते हैं भगवान के ध्यान से क्या होता है, गीता जी में आया है, ध्याय तो विषयान पुंस है, संगस तेषुप जायते, संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों के ध्यान करने मात्र से मनुष्य का महान पतन होता है, तो क्या भगवान के ध्यान से जीव का कल्याण नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। भगवान के ध्यान में मस्त रहे। जब हमारे पास भगवान है फिर और हमें क्या परवाह है। ध्यान के वातावरण से दूसरे का ध्यान भी लग सकता है। अपने यदि ध्यान में मस्त रहे तो हमारे द्वारा जो वातावरण बने तो दूसरों का ध्यान लग सकता है। इतनी ध्यान के अंदर महिमा है। जैसे आपके पास इत्र की शीशी है और आपने उसको खोल दिया तो आपके उस सुगंध आ रही है, तो आपके पास वाले को भी आपके यहीं से ही सुगंध आएगी। ऐसे ही आप यदि ध्यान में मस्त हैं तो आपकी मस्ती से दूसरों को भी मस्ती आ सकती है। हमारी दृष्टि में ध्यान क्यों नहीं लगता है, मन क्यों चंचल होता है, उसका एक कारण ही लगता है कि हृदय में विषयों से वैराग्य की कमी है। बस आप लोगों की नीयत में मैं खराबी नहीं मानता हूं, आप ध्यान करना चाहते हैं परंतु विषयों का प्रेम रखते हुए चाहते हैं, और विषयों में जब प्रेम रहता है तो विषयों का ही ध्यान होगा। ध्यान में वैराग्य और उपरति प्रधान चीज है। हम तो कभी कभी और भी आगे की बात बोल देते हैं, यदि आपके अंदर विषयों का वैराग्य हो गया तो फिर भगवान के ध्यान की जरूरत ही नहीं है। पर अपने आप ध्यान हो जाए तो आप क्या कर सकते, रोक सकते हो? जैसे अभी विषयों में प्रेम होने से भगवान में ध्यान करते हैं तो अपने आप विषयों में प्रेम होता है, उसको आप रोक नहीं पाते, तो वैराग्य होने पर आप भगवान का ध्यान रोक नहीं पाएंगे, अपने आप होगा। उसमें संसार की बात याद आने की बात है ही नहीं। स्फुरणा रहित वृत्ति हो जाती है। जैसे किसी को मांस से शराब से वैराग्य हो गया, उसके कभी वृत्ति आती नहीं, ऐसे वैराग्य हो, साकार हो परमात्मा चाहे निराकार हो, उसमें अपनी स्थिति बनाए रखो, अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करो। योग शास्त्र में लिखा है चित्त में खूब वैराग्य रहे। गंगा के किनारे मन स्वाभाविक एकाग्र होता है, गंगा का स्थान हवा ये ध्यान में सहायक है। ध्यानावस्था में मनुष्य बैठा हो उसका वातावरण अच्छा होता है, स्वाभाविक है। गंध आती हो तो गंध का वातावरण ही और है, शब्द आता हो तो शब्द का वातावरण और है। मन में अनेक प्रकार की वासना हो तो उस तरह का वातावरण फैलता है। इंद्रियों से जैसी क्रिया हो वैसा वातावरण फैलता है। कामी से काम का वातावरण फैलता है, भोगी से भूख का वातावरण फैलता है, आलसी से आलस्य के परमाणु फैलते हैं, क्रोधी से क्रोध के परमाणु फैलते हैं। जैसे दो आदमी आपस में लड़ते हो और कोई क्रोधी आदमी चला जाएगा तो दोनों की लड़ाई तेज होगी, और कोई वहां संत चला जाएगा तो दोनों का ही महाराज आ रहे हैं, दोनों ही एकदम शांत हो जाएंगे। क्या वे दोनों अच्छे पुरुष थे क्या कि वो चुप हो गए? अच्छे होते तो लड़ते ही क्यों? क्रोध किया लड़े, और संत आ गए तो क्रोध शांत हो, संतों की शांति का प्रभाव पड़ा। ऐसे ही क्रोधी आदमी आता है तो पहले छुटपुट लड़ाई होती, क्रोधी आदमी के आती लड़ाई भभक जाती है, जैसे कोई आग में पेट्रोल डालता हो, आग फैल जाती हो। इसलिए ध्यान करने वाले के वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान के वातावरण से स्वाभाविक ही दूसरों पर ध्यान का असर पड़ता है, ये स्वाभाविक बात है। तो हम तो आपसे यही बोलते हैं कि ध्यान में मस्त होकर घूमो, ध्यान के परमाणु फैलेंगे, समष्टि अंतःकरण में जो बात हो वो आकाश में फैलती है और आकाश का गुण शब्द है, वह आकाश में फैल जाता है। शब्दों से ऊंचा दर्जा मन बुद्धि का है, अपनी वाणी में उत्तम शब्द होंगे तो आकाश में व्यापक होंगे और फिर उनका कोई ग्राहक होगा तो उसको वे शब्द अपने आप मिल आएंगे, क्योंकि आकाश सब जगह तो उसमें शब्द भी सब जगह है। जैसे रेडियो बजाते हैं, मेरा नाम रेडियो ही हो, रेडिया बजाते हैं तो सुई को जिस स्टेशन पर चलाते उसी स्टेशन के शब्द को पकड़ता है। अब उस रेडियो में अनेक स्टेशन है पर आपको जहां बजाना है वो वहीं के ही शब्द को पकड़ता है। उस रेडियो में कौन सा स्टेशन नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, सभी है, पर आपकी सुई ने जहां उसको पकड़ा वहां के शब्द आपको सुनाएगा। ऐसे ही आकाश में सब प्रकार के शब्द हैं, इसलिए अपने मन के भाव जिन शब्दों को पकड़ने के लिए लालायित रहता है उन शब्दों को ये पकड़ता है और पकड़ करके उनको धारण करता है। इसलिए अपने मन में भगवान की किसी भी भगवान की किसी भी मूर्ति का ध्यान, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, अपने मन बुद्धि में कर लो और फिर मन बुद्धि के द्वारा शब्दों को पकड़ो, शब्द मिल जाएंगे, आकाश में सब चीज मिल जाएगी। इस प्रकार से ध्यान के वातावरण को आप स्वयं बना करके ध्यान में मस्त रह सकते हो। नारायण नारायण।